ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। न शप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये भागवत का प्रथम स्कंध है, अध्याय 8 और श्लोक संख्या 31। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। अध्याय का शीर्षक है गोप्यानदे त्वयि कृतागसी धावताम। या ते दशाश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्राङ्गिनीय भयभावनयासितस्य सा मा विमोयति भीरपि यद्विभेति। गोपी ग्वालिन यशोदा ने आदते लिया त्वयि आप पर कृतागसी अर्चन डालने पर मक्खन की मटकी फोड़ने पर दाव रस्सी तावत उस समय या जो ते तुम्हारी दशा स्थिति अश्रुकलिला अश्रुपूरित अंजना काजल संभ्रम विचलित अक्षम नेत्र वक्त्रम चेहरा मुंह निनिया नीचे की ओर भय भावनया भय की भावना से स्थितस्य स्थिति का सा वह मां मुझको विमोयति मोहग्रस्त करती है भी अपि साक्षात भय भी यत् जिससे भिवेती भयभीत है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई जिससे आपके आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तात्पर्य शिल्पोपाधि
हरे कृष्ण। तात्पर्य यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि हैं, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करते हैं और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह परमेश्वर की परिस्थिति को भूल जाते हैं। भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्रोतों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उलहाने को वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इधरा धाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी बालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे और वे सब इस भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा यह देखती तो वह शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती। वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे उन्हें बांध देगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपोलों पर ढुलक पड़ता। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनके परम स्थिति के प्रति सतेष्ट थी, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे भगवान अपनी माता से भयभीत हैं क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था लेकिन यशोदा को नहीं था, अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममतामय यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या कर सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी।
ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयम् अदाति स्वपदान्तिकम् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित वैष्णव तूषणी से उद्धरण दे रहे हैं। उनका कहना है कि आज के दिन ही ये दामोदर लीला हुई, प्रातः काल में सुबह लीला प्रारंभ हो चुकी है और अभी तो शायद माता यशोदा पूरा प्रयास कर रही है उनको बांधने का पूरा प्रयास कर रही है माता यशोदा। तो प्रातः काल ये लीला प्रारंभ हो चुकी है, दामोदर लीला आज के दिन ही ही वो लीला हुई, ये मत है श्रीला विश्वनाथ ठाकुर का, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में। तो भागवत के दशम स्कंद का नौवां अध्याय है और अध्याय का शीर्षक है माता यशोदा द्वारा कृष्ण का मानस, और ये श्लोक हमने लिया था, ये कुंती महारानी के द्वारा बोला गया श्लोक है, भागवत के प्रथम स्कंद में है। ऐसा क्यों, कुंती महारानी ने श्लोक क्यों बोला है? कुंती महारानी ने ये प्रार्थनाएं कही है हस्तिनापुर में, अचानक उनको ये ब्रज की लीला का स्मरण कैसे हो गया? क्योंकि कुंती महारानी ने ये लीला का दर्शन किया था। जब ये लीला हुई थी आज के दिन, तो कुंती माता कुंती उस समय गोकुल में थी और उन्होंने ये लीला देखी, तो वही लीला का स्मरण कर रही है कुंती महारानी हस्तिनापुर में बाद में। तो माता यशोदा, वैसे तो और भी घर में और भी गोपियां हुआ करती थी, परंतु गोपियां अन्य गोपियां भी जो है कृष्ण के लिए मक्खन तैयार करती थी, लेकिन माता यशोदा का ऐसा लग रहा था कि ये मेरा बालक है जो अन्य घरों में चला जाता है माखन चोरी करने के लिए। अभी इतना छोटा सा है लेकिन दूसरे घरों में जाकर माखन चोरी करता है। शायद हो सकता है कि जो यहाँ माखन मैं बना रही हूं या बनाया जा रहा माखन वो इतना स्वादिष्ट नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। माता यशोदा ने सोचा कि ठीक है, आज मैं स्वयं दही मथूंगी। और माता यशोदा ने कृष्ण के लिए कुछ ऐसी गायों को चुन के रखा था जिसके लिए विशेष रूप से वो सुगंधित घास खिलाया करती थी उन गायों के लिए। वो गाय बहुत विशेष थे और का दूध भी बहुत दूर से सुगंध आता था दूध में। ऐसा नहीं आजकल की तरह जो मदर डायरी का दूध है या जो भी दूध है अवेलेबल मार्केट में है जिसमें नाना प्रकार के और दूध भी मिले हुए हैं और पाउडर भी मिला है, यूरिया भी मिला है, और हम सोच रहे हैं दूध पी रहे हैं, दूध है ही नहीं वास्तव में। प्रभुपाद ने कहा है तात्पर्य में भागवत में, मिल्क मीन्स काउ मिल्क, प्रभुपाद ने लिखा है कि दूध का मतलब ही गाय का दूध, ये सब दूध नहीं है, ये सब नकली है। लेकिन क्या करें, कलयुग में यही मिलता है, दूध के लिए झगड़ा होता है, दूध के लिए पानी के लिए झगड़ा हो रहा है आजकल। तो ये कलयुग की विशेष स्थिति ऐसी है कि हम लोग छोटी छोटी जीवों के लिए झगड़ा करने लग जाते हैं। प्रायण अल्पायुषः कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रता। तो दूध के लिए झगड़ा है, पानी के लिए झगड़ा है, हवा के लिए झगड़ा है, यानी कि जो बेसिक आवश्यकताएं हैं आज के समय शहर में रहने के लिए वो है नहीं हमारे पास। और हम कहते हैं कि आगे बढ़ रहा है हमारा देश, देश आगे कहां बढ़ रहा है जब आपके लिए दूध नहीं मिल रहा, आपको हवा पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, इतनी बुरी हालत है। तो सभ्य समाज में ऐसे ही होता है, लेकिन ये समाज जो था ये सभ्य समाज है, ये वैदिक समाज है, जहां पे किसी व्यक्ति को धनी कहा जाता था कब, जब उसके पास गाय होती थी, ये उसका धन था, धन धान्य। और धन क्या था, ये था अनाज, वहां की फसल धान ये हुआ करता था धन, इसको धन कहते थे। कागज के नोट धन नहीं होते थे, कागज के नोट थे ही नहीं, सोने की मुद्राएं थी, चांदी की मुद्राएं थी, लेकिन कागज के नोट नहीं थे। आज भी जिसके पास कागज के नोट है वो इस समय बहुत धनी। तो आजकल के लोग सब गरीब हैं क्योंकि ये सब कागज का जमाना है, प्लास्टिक का जमाना है। ये था समय जब पूरा नंदगांव, पूरा गोकुल, पूरा ब्रज जो है गायों से भरा हुआ था, और विशेष गाय थी कुछ, और ये सब देसी गाय थी, नो जर्सी नो बफलो, बफलो भी थे, भैंस भी हुआ करते थे, लेकिन गाय का दूध ही दूध माना जाता था और देसी गाय का दूध, और उनकी सेवा भी होती थी। ऐसे नहीं सड़क पर प्लास्टिक खा रही है, कागज खा रही है, कूड़ा खा रही है, नहीं, या फिर जब दूध की आवश्यकता है तो दूध निकालो, जैसे दूध देना बंद कर देती है गाय तो उसको भेज दो स्लॉटर हाउस में, ये आजकल की सभ्यता है सो कॉल्ड। लेकिन तब क्या था, गाय की सेवा हुआ करती थी, नंद महाराज माता यशोदा स्वयं जो है उन्होंने कुछ गाय चुन के रखी हुई थी जिनको सुगंधित घास खिलाया करती थी। अभी कुछ समय पहले कोई वहां से हिमाचल से हमारे लिए घी लेके आया था, देसी गाय का घी, और उनके घर में जो गाय चराते हैं पहाड़ों में और वहां की जो घास बहुत हरी भरी होती है, औषधि भी होती है उसमें, वो घी जब हमने सूंघा तो उसमें उस घी में घास की खुशबू आ रही थी, सुगंधित घास की खुशबू आ रही थी, तब हमें लगा कि भागवत में झूठ नहीं बोला गया है, सच ही बोला गया है। ये तो एक सैंपल था मुझे मिला था। मैंने कहा कि प्रभु आपके लिए विशेष घी लाए, ये असली है, ये मक्खन का बना हुआ है, ये दही को मथा गया है, मंथन करके जो है शुद्ध घी निकाला गया है, आपके लिए लेकर आए। उसमें से घास की खुशबू आ रही थी दूर तक, याद है नीचे वो घी की खुशबू पट हमारे टेम्पल हॉल तक आ रही थी, इतनी खुशबू है उस घी में। तो ये दही को मथ रही है माता यशोदा, और अपने घर में नंद महाराज के घर में, यानी कि अपने घर में गोकुल में है अभी समय। ये गोकुल का, गोकुल की लीला है। जय हो राधिका रमण की जय, जगन्नाथ सुब्रमण्य की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो ये लीला गोकुल की लीला है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले प्राजमानम, गोकुल में शोभायमान है। और ये सत्यव्रत मुनि की जो प्रार्थना है, दामोदर अष्टकम जिसको कहते हैं, ये गोकुल में ही ये घटना हुई है। 3.5 साल कृष्ण जो है गोकुल में उन्होंने लीला की है। अभी 3-3.5 साल के थे जब ये लीला होने वाली है, और इससे पहले और कई लीला हो चुकी थी। 6ठे दिन में कृष्ण ने पुतला का वध कर दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ समय के बाद शक्तासुर का वध किया, फिर त्रिणावत का वध किया। भय उत्पन्न नहीं हुआ है गोकुल में, आनंद बड़ा है भक्तों का। ये आनंद का कुंड है ये गोकुल, ये आनंद कभी कम नहीं होता है। असुरों को मारे, राक्षसों को मारे, असुर आए, गोकुल में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आनंद है, क्योंकि इन लीलाओं का गुणगान करते हैं ब्रज के परिकर। और माता यशोदा यहां पे कर रही है, बाल क्रीड़ाओं का स्मरण कर रही है माता यशोदा। और कौन सी लीलाओं का गुणगान कर रही है? यही सब लीला, पूतना का वध किया, त्रिणावत का वध किया, नहीं शक्तासुर का वध किया, पता नहीं क्या ट्यून में गाया होगा और क्या उसके बोल होंगे, लेकिन ये असुरों का वध किया कृष्ण ने, तो उसका गुणगान कर रही है माता यशोदा। कब कर रही है? दही का मंथन करते हुए। कई बार भक्त पूछते हैं, हम तो गृहस्थ आश्रम में है, कैसे हम लोग भक्ति करें, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो माता यशोदा से सीखना चाहिए हमें, माता यशोदा। लेकिन आपको दही मंथने का समय नहीं मिलता है, आजकल सब मशीन में है, तो क्या कैसे निकलेगा आपके पास समय? बटन दबा के आप चले जाते हैं बाहर। लेकिन जो भी है, थोड़ा बहुत जो कुछ बनाते होंगे अपने हाथ से, तो उस समय तो आप गुणगान कर सकते हैं। अगर कुछ लीला का स्मरण नहीं हो रहा है तो महामंत्र का कीर्तन ही कर लो, या फिर अगर लगता है कि बोलना ठीक नहीं है कुकिंग करते वक्त, तो बास में प्रभुपाद का कीर्तन चला लो। तो किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं, ये ना देखिए सब इच्छा के ऊपर निर्भर है आपकी। जब प्रजपा करना होता है हमें, तो कैसे समय निकालते हैं हम लोग? नहीं, बड़ा सुख मिलता है उसमें, बड़ी रुचि हमारी उसमें। वहां कितने भी बिजी हो, कितने भी व्यस्त हो, ऐसा लगता है जब तक हम 2-4 लोगों की बुराई ना कर ले, तब तक आज हमें शाम को रात को नींद नहीं आएगी। अगर चाहे रात को नींद आए, घोर निद्रा में जाए, तो उसके लिए कुछ लोगों के बारे में बोलना जरूरी है, यह भी एक जरूरी खुराक है। सुख मिलता है उसमें, बहुत सुख मिलता है, उसके लिए बहुत समय हमारे पास। माता यशोदा के पास समय ही नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही कार्य है, कृष्ण के बारे में सोचना। दिन रात कृष्ण के बारे में सोचती रहती है, 24 घंटे पागल है कृष्ण के लिए, मधुर मत है बिल्कुल। इसलिए यहां पे दैवी मत रही है, वो भी कृष्ण के लिए, कृष्ण की क्रीड़ाओं का, बाल क्रीड़ाओं का गुणगान कर रही है, स्मरण कर रही है, वो भी कृष्ण का है, सब कृष्ण का ही है, 100% कृष्ण कॉन्शियस। नहीं, जैसे ठाकुर भक्ति रोज कहते हैं, पूर्ण विकसित चेतना, फुली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित, 100% कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण का ही चिंतन होगा, कृष्ण भावना भावित पूर्ण रूपेण हो गए। तो दही का मंथन कर रही है ऐसे 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 मथनी में, दही का मंथन हो रहा है मथनी के द्वारा। क्या बनाना है उसमें से? मक्खन बनाना है, और कई और भी है साथ में। भौतिक जगत में तो जड़ वस्तु है, इन जड़ वस्तुओं का कोई उनकी कोई क्रिया नहीं है, कोई चेतना नहीं है, चेतना है भी तो बहुत आच्छादित है, नहीं, लेकिन वहां पे भगवान के धाम में आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। वहां मटीरियल करके कुछ है नहीं, हारमोनियम है पता नहीं वहां पे, लेकिन हारमोनियम स्पिरिचुअल होगा वहां अगर होगा तो। हारमोनियम तो खैर ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ये तो अंग्रेजों की देन है, तो पता नहीं वहां है कि नहीं, लेकिन जो भी है, लेकिन जो भी है वहां पे टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, या फिर वो मथनी है, या उखल है, या फिर माता यशोदा के हाथ में जो कंगन है, वो कंगन जो है चूड़िया, वो भी खन खन कर कर रही है, जब माता यशोदा मंथन कर रही है तो उनकी भी आवाजें आ रही हैं, खन 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 की आवाज आ रही है, और वो चूड़िया और कंगन भी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि क्या बात है, हमारा सौभाग्य हमें भी सेवा का मौका मिल रहा है। माता यशोदा जब भी हाथ हिलाएंगी तो उनको भी सेवा का मौका मिल रहा है, वो भी हिल रहे हैं साथ साथ, और साथ में काल के कुंडल भी हिल डुल रहे थे, माता यशोदा काल के कुंडल भी हिल डुल रहे थे, और कुंडल भी जो है बहुत ज्यादा खुश थे। ये तो कुंडल कृष्ण के काल में भी है, दशरथ कुंडलम, कुंडल ऐसे ऐसे कथावाचक है ब्रज में, वो दामोदर लीला के ऊपर एक शब्द के ऊपर पूरी हफ्ता बिताते हैं, लसत कुंडलम के ऊपर पूरा हफ्ता बीत जाता है। आज श्लोक की व्याख्या करेंगे, इस शब्द की व्याख्या करेंगे लसत कुंडलम, और पूरे हफ्ते लगे रहते उस, और पता नहीं काष्ट कम कम समाप्त होगा शायद कार्तिक मास के अंत में। तो कथा करने वाले ऐसे ऐसे है भक्त हमारे, जो बोलते ही जाते हैं कृष्ण के बारे में रुकते ही नहीं है। कुंडलम, कुंडल जो है यह भी चिन्मय है, कंगन और चूड़ियां भी चिन्मय है, वह सब चिन्मय है, और कुंडल भी बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। वाह, ये माता यशोदा के कर्ण में हम वास कर रहे हैं, और हमें माता यशोदा के सारी लीलाओं का श्रवण करने का हमें मौका मिल रहा है। ये कुंडल का सौभाग्य है, कंगन चूड़ियों का सौभाग्य है। ऐसे कुंडल है आपके? कुंडल तो है ही नहीं, जिनके हैं और जिनके कंगन चूड़ियां हैं माताओं के, तो वो ऐसा सोचते हैं क्या? वो तो जड़ वस्तु है। तो लेकिन भगवान की लीला में ऐसा है, चिन्मय है, सबसे कुछ चिन्मय है वहां पे, ये सब परिकर है भगवान के, सब परिकर है, अलग अलग रसों में जो है भगवान के साथ आनंद आदान प्रदान कर रहे हैं। और बालों के फूल गिर गए, क्योंकि माता यशोदा जो है मथनी से मंथन कर रही है, तो बाल जो केश के बाल से वो गिर गए। क्यों गिर गए? ऐसे ही नहीं गिरे, वो जानबूझ के गिरे। फूल भी चिन्मय है, फूल भी चिन्मय है, चिन्मय स्पिरिचुअल सच्चिदानंद है वो फूल। प्लास्टिक के फूल लगाते हैं आजकल तो, लेकिन वहां जो फूल है वो भी चिन्मय है और खुशबूदार फूल है, और वो फूल जो है चरणों में आके गिर गए। क्यों चरणों में आके गिर गए? क्यों? सोचा ये अच्छी बात नहीं है, माता यशोदा कृष्ण के लिए मंथन कर रहे हैं, और कृष्ण कौन है? ये सभी कारणों के कारण है, सब इनकी सेवा में लगे हैं, तो हमारे लिए शुभा नहीं देता कि हम मस्तक में जाके बैठ जाए या सर में जाके बैठ जाए, हमारी जगह तो चरणों में है। तो फूल भी आके चरणों में आके गिर गए, इस वजह से वो भाव था उनका फूलों का, और फूल नहीं थे, पुष्प थे। फूल मतलब मूर्ख नहीं थे, वो फूल थे, फूल खुशबूदार फूल थे, केश में लगाए हुए थे, और वो कृष्ण के चरणों में आके गिर गए, माता यशोदा के चरणों में आके गिर गए। उन्होंने सोचा कि हमारी जगह जो है यही है, दिस इज अवर राइट प्लेस, ये हमारा असली पोजीशन है, ये हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वरूप है, हमें नीचे रहना चाहिए। तो वो भी नीचे आगे गिर गए, फूल भी नीचे आगे गिर गए। तो देखिए क्या व्यवस्था है, देखिए एक ही लीला में तो इस तरह से अलग अलग तरीके से माता यशोदा भगवान को प्रसन्न करने का भरपूर प्रयास कर रही है, और बहुत सुस्वादिष्ट जो है खुशबूदार मक्खन तैयार किया जा रहा है उनके द्वारा। तो अब यहां पर जो एक भागवत में वर्णन आ रहा है, उन्होंने कि ताम सन्य कामा असाध्यम मथनितम जनिनम हरिहि, मतलब क्या है बता रहे हैं कि माता यशोदा जब दही को यानी दही को मथ रही थी, उस समय कृष्ण उठकर आए, भीतर से सो रहे थे। मंगल आरती के समय हम भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी आरती इत्यादि करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन नित्य लीला में उस समय कृष्ण सो रहे होते हैं, जानते हैं। मंगल आरती हमारे लिए, लेकिन लीला में भगवान बहुत गहरी नींद में होते हैं, और गहरी नींद में क्या उस समय तो निशान लीला चल रही होती है। कई और होते हैं भगवान, योगपीठ में होते हैं, रासलीला जहां होती है वहां होते हैं कृष्ण, और वहां पे निशान लीला होने वाली है, और वहां पे गोपियों के साथ राधा रानी के साथ विशेष रूप से वहां पे विश्राम कर रहे हैं, और कुछ समय के बाद फटाफट वहां से आ जाते हैं। कहां भी योगपीठ वृंदावन से जहां महाराज हुआ है वहां से वापस आ जाते हैं नंदगांव या फिर गोकुल। अभी तो खैर रासलीला का समय नहीं था, रासलीला तो 7 साल के बाद प्रारंभ हुई थी, लेकिन वैसे बता रहे हैं कि उनका क्या कार्यक्रम रहता था कि वहां पे वृंदावन में रात्रि को जाते थे और रात्रि को रासलीला होती थी। प्रातः काल सुबह सुबह बिल्कुल भोर में नंदगांव में पीछे के दरवाजे से घुस जाते थे और आगे सो जाते थे। माता यशोदा को लगभग 6 बजे आकर उठाया करते थे, उठो उठो सुबह हो गया है, सुबह का समय हो गया, कितने देर सोते रहोगे, तो हाथ रासलीला वगैरह करके आ गए, और माता यशोदा को लग रहा है कि ये तो अभी तक उठा ही नहीं है, लेकिन वो तो बाकी लीला है। लेकिन यहां पे गोकुल में भी कृष्ण जो है इतनी जल्दी नहीं उठते जितनी जल्दी आप लोग उठते हैं, तो आप पहले उठते हैं, अच्छी बात है, सेवक को पहले ही उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि मालिक उठ गया है और सेवक सो रहा है, नहीं। प्रभुपाद जी जब वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग करते थे, इंटरनेशनल टूर में जाते थे, तो डिसाइपल्स की बहुत बुरी हालत होती, क्योंकि वो चाहे जो शिष्य होते थे वो बहुत संघर्ष करते थे। प्रभुपाद हमेशा एक ही उनका शेड्यूल रहता था रोज का, वो कहीं भी जाए बोर्ड पे कहीं भी टूर हो उनका एक ही शेड्यूल है। एक ही शेड्यूल का मतलब है जेटलॉग नहीं होता था प्रभुपाद जी, जेटलॉग का मतलब है कि कहीं दिन है तो कहीं रात है, सारा जो है आपका सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम बदल जाता है। नहीं, यहां सुबह है तो जहां पहुंचेंगे 8-10 घंटे के बाद तो वहां भी देखेंगे सुबह है, तो फिर रात को जागेंगे दिन में सोएंगे, ऐसा होता है सामान्य रूप से, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ ऐसा नहीं होता था। अगर प्रभुपाद पहुंच जाएंगे रात के 11 बजे भी किसी मंदिर में, अगर 8 घंटे 6 घंटे ट्रैवल करके आए, कहीं से 11 बजे पहुंचे मान लीजिए रात्रि को, तो 12:30 बजे उठना ही, वो बैठे के भागवतम का अनुवाद करें, उनका टाइम वही है, और सुबह वही टाइम है 6 बजे मॉर्निंग वॉक में जाना। तो सोते कब थे प्रभुपाद, अब ये तो हम नहीं पता कि सब सोते थे प्रभुपाद, तो 24 घंटे में प्रभुपाद 3 घंटे ही विश्राम करते थे, रात को 10-10:30 बजे करीब विश्राम करते थे, और 12:30 बजे भागवतम का ट्रांसलेशन शुरू करते थे। और डिसाइपल जाते थे साथ में, वो तो ऐसा नहीं कर सकते ना, तो वो लोग 11 बजे अगर पहुंचे प्रभुपाद के सामने, वो जाके अपने फ्लैट विश्राम करते, प्रभुपाद बोलते भी थे गो एंड टेक रेस्ट, आप लोग जाके रेस्ट करो। और सुबह मंगल आरती का समय है, अब उस समय ये लोग बहुत ज्यादा थके हुए, बहुत टायर्ड है, वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, रात को नींद भी नहीं आ रही उनको, सारा शेड्यूल बदला हुआ है, और प्रातःकाल जब उठने लगे तब सोने लगे, सोने का ठीक समय आने लगा, सुबह सुबह जब नींद आने पकड़ने लगी उस समय प्रभुपाद जी आके डांटते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मंगल आरती में सो रहे हो आप सब, यू पीपल आर वर्स देन कर्मीज, तो प्रभुपाद जी डांट के उठाते हो डिसाइपल, एक बार बता रहे प्रभुपाद जी बोलते हैं उस समय तो बहुत हॉरिबल था हमारे लिए, हमें नहीं पता चलता कि क्या सुबह कब हो रही है रात कब हो रही है, और प्रभुपाद अपने शेड्यूल में चल रहे हैं और सुबह चले जाएंगे फिर 6 बजे मॉर्निंग वॉक में चले जाएंगे, तो प्रभुपाद जी फुली एक्टिव थे हमेशा। और उस एज में प्रभुपाद जी की जो उम्र 70 लेट 70s में था, प्रभुपाद जी का ऐसा शेड्यूल था सुन के देखिए। तो प्रभुपाद इस तरह से मायापुर में एक बार, खैर ये तो दामोदर लीला में कहीं और जा रहा लेकिन थोड़ा कनेक्शन में जोड़ रहा हूं उससे, और प्रभुपाद मायापुर में थे एक बार मॉर्निंग में ट्रांसलेशन कर रहे थे, लगभग 4:30 बजे करीब प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन तब भी चल रहा था, और प्रभुपाद ने कहा मैं मंगल आरती में नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास और समय मिलेगा नहीं बाद में, तो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं, आप जाके देखो भक्त तो सभी हैं कि नहीं है मंगल आरती। और वहां पे मंगल आरती जब चल रही थी टेंपल हॉल से कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही थी, और भक्त लोग जो है वॉम्पर्स लेके, वॉम्पर मतलब बड़े बड़े जो करताल है, यहां पे भी कई बार बजाते हैं, हमने तो टेंपल बंद कर दिया वॉम्पर्स, क्योंकि वो तो वहां पे बहुत आतंक मचा लेते हैं जब वॉम्पर बजाते हैं, हाँ, तो ये हमने फिर वहां बंद ही कर दिया, हमने कहा भाई हमने अपने कान भी बचाने हैं और हरिनाम सुनना है, तो ये बात तो ठीक है लेकिन टेंपल हॉल में बहुत दर्दनाक ये साबित हुआ है खासकर कानों के लिए। तो वहां टेंपल से आवाज आती है
प्रभुपाद गा रहे थे, प्रभुपाद अपने कॉन्टेक्स में थे और करताल की आवाज आ रही है, ढम 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 करके आवाज आ रही है और कीर्तन तो सुनाई नहीं दे रहा।
एक बार ऐसे बॉम्बर बज रहे थे यहाँ पर बहुत तेज,
कान फट गया किसी का?
नहीं फटा नहीं, मैंने रुक्मणी कृष्ण जी को बोला, मैं कहा जोर से, मैं कहा प्रभु जी दो दो बॉम्बर बजते हैं इससे कान खराब हो सकते हैं, वो कहते क्या?
हाँ हमारे श्रीधर महाराज से उन्होंने बताया था कि वृद्ध व्यक्ति से एक सुझाव लीजिए आप, जब तक आप बुढ़ापे तक पहुंचेंगे तब तक आपके कान खराब हो जाएंगे, इसलिए इससे बचिएगा। और ऐसा हो रहा है, हम देखते हैं कि एक बार किसी से कुछ बोले वो हाँ 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 करता ही रहता है पांच मिनट, तो बार बार दोहराना पड़ता है एक ही बात। ये बहुत डेंजरस है हमारे ये इसके लिए पर्दे के लिए। तो फिर वो आवाज आई, प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने कहा ये जोर जोर से बजा रहे इतना एक करताल, कीर्तन तो सुनाई नहीं दे रहा है, हरिनाम जो ज्यादा जरूरी है इस करताल से, करताल की आवाज से। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा स्लीपिंग नाउ व्हाई दे आर प्लेइंग सो लाउडली, समझ रहे हैं कितने बजे प्रभुपाद बोल रहे हैं? पौने पांच बजे प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण सो रहे हैं, आप उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो हरीश्वरी प्रभु जैसे उनको समझ में नहीं आया प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, वहां मंगल आरती चल रही है और प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण सो रहे हैं। तो ये बात है, प्रभुपाद जो बोल रहे हैं सही बोल रहे थे, वो नहीं समझ पाए थे, समय बाद में समझेगी प्रभुपाद यहां नहीं है, यहां ट्रांसलेशन कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वहां है, उधर भी है प्रभुपाद। तो ये असली इंसिडेंट है। तो इस तरह से कृष्ण जो है उस समय सो रहे थे, लेकिन आ थोड़ा जल्दी उठ गए माता यशोदा, क्योंकि स्वयं दही का मंथन कर रही थी और इस वजह से कृष्ण जो है उठकर आ गए और स्तनपान करने की इच्छा हुई होगी। और उन्होंने आगे जो है क्या किया, उस मथनी को पकड़ लिया, जोर से रॉड को पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के खड़े हुए। तो माता यशोदा बहुत देखकर खुश हुई, बहुत आनंद आया उनको देखकर, बड़ा अच्छा लग रहा था कि सुबह सुबह जो है कृष्ण उठ के आया है और ये मथनी को पकड़ रहा है, रोक रहा है, और क्या इच्छा है इसकी समझ गए, माता यशोदा समझ गए क्यों उठ के आया है और ये दूध पीना चाहता है। तो कई आचार्यों ने टीकाकार जो है उन्होंने बताया है कि इस लीला में सब कुछ है, यानी कि भगवान की लीला में, भगवान के धाम में ये सारे अनर्थ है शुद्ध रूप में, काम क्रोध लोभ सब है वहां पर, लेकिन शुद्ध सत्व है भौतिक जगत में या बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में नहीं बल्कि योग माया के प्रभाव में। काम क्रोध शुद्ध जो लोभ है वो भी शुद्ध है। तो काम क्या था? स्तन ने काम, यानी दूध पीने की इच्छा थी। और क्रोध क्या था? जब माता यशोदा कृष्ण को छोड़ के चले गए भीतर दूध को उतारने के लिए, दूध वहां उबल रहा था तो उसको उतारने के लिए गई थी, तो कृष्ण को क्रोध आया तो क्रोधित हुए इस तरह से, और लोभ तो था ही इसलिए मटकी फोड़ी उन्होंने। लेकिन यह सब शुद्ध सत्व है, ये हमारे जैसा नहीं है कार्य, भौतिक जगत में कर्म बंधन में और माया के वशीभूत अनर्थों के कारण काम क्रोधित, काम क्रोधित होते हैं या लोभ होता है तो वो तो अनर्थ है हमारे। ये भगवान की लीला में सब विशुद्ध रूप में है। और मथनी मथानी को, मथानी को पकड़ लिया और कृष्ण ने, और माता यशोदा समझ गई कि कृष्ण जो है वो दूध पीना चाह, लेकिन माता यशोदा उस समय फिर कृष्ण को दूध पिलाने लगे, मंथन छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन देखा कि निकट में ही कमरे में दूध उबल रहा है, और दूध उबल रहा है, उबल कर बाहर आना चाह रहा है, गिरने ही वाला है, हमने बताया ना सब कुछ चिन्मय है वहां, ये दूध भी चिन्मय है, उसका भी चिंतन है, दूध सोच रहा है अरे मेरे जीने का क्या फायदा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, उबलता जा रहा हूं। वहां देखो माता यशोदा कितना सुंदर सेवा कर रही है, कृष्ण की सेवा कर रही है, इससे अच्छा है कि मुझे बाहर आके गिर जाना चाहिए, मेरा तो बाहर निकलना ही ठीक है, ऐसे रहने का क्या फायदा। तो बहुत शोक में था और इसलिए माता यशोदा भागी भागी गई। जब पास आई उस बर्तन को उतारने के लिए तो फिर दूध सोचने लगा उस समय, अरे ये तो ठीक नहीं है, देखो मेरी वजह से जो है अब माता यशोदा ने कृष्ण को छोड़ दिया और मुझे यहां उतारने के लिए आ गए, तो मेरा ये भार उबलना ठीक नहीं है। तो दूध ने भार निकलना जो है बंद कर दिया, अपने आप को रोक लिया। तो ये सब वहां होता है, ये सब चिन्ह है, बहुत ही जगह पे ये आप या चिंता से परे है, अचिंत है, ये भगवान की अचिंत शक्ति से हो रहा है, लीला शक्ति है भगवान की, ये भगवान की लीला शक्ति से सारा कार्य हो रहा है। और उसके बाद फिर माता यशोदा भीतर गए, वो बर्तन को उतारा नीचे, और जब वापस आए तो वापस आते ही, क्योंकि बहुत क्रोध हो गया, कृष्ण को बहुत क्रोध आया, मुझे छोड़कर ये मेरी माता भीतर कैसे गई, मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण लो, ये दूर कहां से बीच में आ गया। तो छोटे छोटे बच्चे ही, और देखिए आध्यात्मिक जगत का ही विकृत रूप है संसार में, ये बच्चों की हरकतें बिल्कुल ऐसे ही होती हैं, क्योंकि कृष्ण में ये है गुण, इसलिए बच्चों में भी दिखाई पड़ता है। ऊर्ध्वम अधोशाखा, आध्यात्मिक जगत में जो हो रहा है वही हो रहा है भौतिक जगत में, विकृत रूप में हो रहा है। और वहां पे कृष्ण जो है बिल्कुल बाल रूप, बाल लीला, बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं, और बहुत क्रोधित हो गए हैं, और रो, और उन्हें जो है आंखों की लाल हो गई है, और होठों को उन्हें दांतों के बीच में दबा लिया है, और उन्हें पत्थर उठाया और एक मटकी लटकी हुई थी ऊपर और फेंका, ऐसे मटकी फूट गई, उसमें से दही निकल रहा है, मक्खन निकल रहा है, सब नीचे आके गिरा, और उसको तोड़कर मक्खन लेकर, ताजा मक्खन लेकर, दही इत्यादि लेकर दूसरे कमरे में चले गए। और दूसरे कमरे में चले गए तो फिर उसी समय माता यशोदा जो है फिर बाहर आई, बर्तन को उतार के जब बाहर आई तो बाहर आके देखा कि कृष्ण गायब है और मटकी फूटी हुई है, और क्या देखा उन्होंने कि चरण के चिन्ह नजर आ रहे हैं, दही नीचे गिर गया था तो उसी में चले थे वो, तो कमरे में सब चरणों के चिन्ह नजर आ रहे थे भगवान के, और चरणों के चिन्हों को देखा तो माता यशोदा समझ गई निश्चित रूप से कृष्ण की ही करतूत है, ये उसी की करतूत है, और पीछे पीछे गए उस चरणों के चिन्ह का अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे गए और पहुंची दूसरे कमरे में। वहां कमरे में क्या देखते हैं कि कृष्ण जो है माखन दही उखल के ऊपर बैठकर, उखल को उल्टा कर लिया था उन्होंने, उखल को उल्टा करके उसके ऊपर बैठ गए थे, और वो दही को मक्खन को बानरों को बांट रहे थे, बंदरों को बांट रहे थे। अब बंदरों को बांटा, बानरों को बांटा, तो उतने में क्या हुआ, माता यशोदा पीछे पीछे आई और चुपके से वहां पास पहुंचे, और जब देखा कृष्ण ने कि माता के पास छड़ी है हाथ में, और अब वो डांटने के लिए मारने के लिए मुझे आई है, इतने भयभीत हो गए कृष्ण कि बस रोने लगे, रुदंतम मुहुर् नेत्रम युगम मृजंतम कराम भोज युगमेन सातंक नेत्रम मुह श्वास कंपा तिरेकांक कंठा सिते ग्रेव दामोदर भक्ति बद्धम। तो कराम भोजम, अपने हाथों से उन्होंने क्या किया, अपने आंखों को ऐसे पोंछने लगे, रोने लगे, रोने की एक्टिंग करते हैं कृष्ण भी, वहां भी एक्टिंग चलता है और रोते हैं, कृष्ण ऐसा दिखा रहे मैं रो रहा हूं, आंखों से आंसू बह रहे, भय दिखाई दे रहा है उनके चेहरे पर, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी है भीतर, और रो भी रहे हैं, आंखों को अपने हाथों से पोंछ रहे हैं, और पोंछते जा रहे हैं, पोंछते जा रहे हैं। और अब क्या हुआ कि माता यशोदा जो है वो पीछे पीछे भाग रहे, पीछे पीछे भागने लगे, माता यशोदा पीछा कर रही है, या बताया सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं वो सब भी कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते उनको। परमात्मावादी या योगी जो है वो कितने सारे प्राणायाम इत्यादि तपस्याएं इत्यादि करते हैं, ध्यान लगाते हैं कृष्ण को पाने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए, सबसे पहले वो भी उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं पंथास कोटि शत वत्सर संपर्गम्यो वायु रथापी मनसो मुनि पुंगवान, मन की गति से, वायु की गति से योगी जो है उनकी मन की गति, वो मन को इतना केंद्रित कर लेते हैं बड़ तेजी से उनका मन भागता है जहां भी भगाना चाहते हैं। तो वो प्रयास कर रहे हैं कि भगवान तक पहुंच जाए मन, नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत मुश्किल है क्योंकि मन इतना तेज होता है, अगर आप बैठे बैठे यहां से अगर अमेरिका जाना चाहें तुरंत जा सकते हैं, कहीं भी विश्व के किसी कोने में जा सकते हैं मन से, नहीं ये सूक्ष्म शरीर कहीं भी जा सकता है, लेकिन यहां पे कृष्ण भाग रहे हैं, माता यशोदा पीछे भाग रही है, योगी जन जो है ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी लोग जो है भगवान को नहीं पकड़ पाते, ये भगवान तक नहीं पहुंच पाते। हम देखते काले वर्ण जो राक्षस था, असुर था, रण छोर की लीला में देखते भगवान भाग रहे हैं और काले वर्ण पीछे भाग रहा है कृष्ण को पकड़ने के लिए और पीछे चिल्ला रहा है, कहां भाग रहे हो कायर, रुको रुको, रणभूमि छोड़ के भाग रहे हो, पीछे भागता रहा काले वर्ण, लेकिन पकड़ पाया कृष्ण को नहीं पकड़ पाया। या जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं हम लोग, वो भी उसी से ही खींचते हैं। जगन्नाथ जी के रथ को जब खींचते हैं, लाखों लोग खींचते हैं जगन्नाथपुरी में, कम से कम 10-15 लाख लोग आते हैं और सब रथ को खींचते हैं, जहां जगन्नाथ जी की इच्छा होती है रुकने की वहां रुक जाते हैं। फिर कोई दुनिया की ताकत लगा लीजिए आप, जगन्नाथ जी का रथ हिलता ही नहीं, हिलता है नहीं हिलता ना। और जहां चाहे तो 2 मील की दूरी है सिर्फ नीलाचल से सुंदराचल, और कभी कभी तो 6 घंटे 7 घंटे, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन भी लग जाते हैं, 2 मील पूरा करने के लिए 3 दिन लग जाते हैं कई बार, तो जगन्नाथ हिलते ही नहीं। ऐसा क्या है, ये तो लीला है भगवान की, यही है योग माया का प्रभाव कि भगवान अपनी लीला से दर्शा रहे हैं कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है अगर मैं नहीं चाहूं तो माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही है और देख रहे हैं कि कृष्ण ने भी देखा कि काफी थक गई है ये, और उनके केश के फूल भी गिर गए हैं, पसीने पसीने से लथपथ हो गई है, पीछे भाग रहे हैं पकड़ने की प्रयास कर रही है, कृष्ण आगे भागे जा रहे हैं कि माता यशोदा का शरीर भी बहुत भारी है तो बहुत तेजी से भी नहीं भाग सकती है, जैसे कई बार होता है ऐसा देखने में कई बार लगता है कृष्ण तो बहुत छोटे हैं, माता यशोदा तो इतनी बड़ी है, क्यों नहीं पकड़ पा रही थी इतनी जल्दी। तो घर में कई बार देखते हैं छोटे छोटे चूहे आते हैं, चूहिया हमारे रूम में रोज आता है, एक चूहिया आती है रोज हमारे कमरे में, और उसको पकड़ना आज तक संभव नहीं हो पाया, और हम देखा क्या स्फूर्ति है उसकी, क्या उसकी स्पीड है, मतलब आप इधर देखेंगे तो उधर पहुंच चुकी होगी, अब उधर देखोगे तो इधर आ जाती हो, तो हम कितने बड़े हैं साइज में, लेकिन एक चूहिया तो नहीं पकड़ पाते हैं। तो कृष्ण भी ऐसे ही है, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, चूहिया से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम भाव बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है उनको पकड़ना, क्षमा करें मतलब कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा था, तुलना नहीं है ये। लेकिन कई बार ऐसे उदाहरण दे देते हम लोग अगर नहीं समझ में आता, हमारी भौतिक बुद्धि है ना, आध्यात्मिक बुद्धि तो है नहीं, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि इसलिए मेटेरियल एग्जाम्पल देकर समझना पड़ता है। किसी ने कहा उस दिन हमसे, प्रभु जी आप तो जब भी देखें भौतिक उदाहरण देते हैं, ये एग्जाम्पल्स का स्पिरिचुअल लाइफ से क्या कनेक्शन है, ये तो मेटीरियल एग्जाम्पल्स है, सारे लॉजिक्स आपने दिए हैं। हमने कहा क्योंकि आपका लेवल मटेरियल लेवल पर है, आपका कॉन्शियसनेस, आपका इंटेलिजेंस क्योंकि मटेरियल लेवल पर है, इसलिए आपको मटेरियल एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे तब आपको स्पिरिचुअल एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बोलते हाँ ये बात तो सही है, तो लेवल के हिसाब से, तो यानी हम सब एक ही लेवल में है, समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, समझने के लिए है, मतलब बड़ा मुश्किल है, माता यशोदा नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन कृष्ण सोचा चलो ठीक है, माता यशोदा इतना प्रयास कर रही मुझे पकड़ने के लिए, पकड़ में आ जाता हूं मैं, तो माता यशोदा ने पकड़ लिया और कृष्ण रो रहे हैं अपने आंखों को पोंछ रहे हैं, काजल सारे उनके जो आंखों में काजल लगाया था माता यशोदा ने, वो पूरे चेहरे में जो है, चेहरे में काजल फूट गया, पूरे काजल चेहरे में आ गया, वो नहीं पूरे चेहरे में काजल ही काजल, वैसे काले हैं कृष्ण और काले लग रहे थे, पूरा काला काला हो गया उनका चेहरा। तो इस तरह फिर उसके बाद फिर माता यशोदा ने फिर डांटना शुरू किया कृष्ण को, क्या डांटा, उन्होंने कहा कि बहुत उद्रव मचाते हो, बहुत तुम यातना करते हो मुझे, आज मैं बांध दूंगी कहीं जाने नहीं दूंगी, और क्या होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे जो सखा है उनसे उनके साथ खेले नहीं दूंगी, तुम्हें कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा अभी। ये सुनकर तो और भी ज्यादा कृष्ण दुखी हो गए, क्योंकि अभी क्या है कि बांधना तो होगा, अब मैं खेल भी नहीं पाऊंगा, अब किसके साथ जाके खेल भी नहीं सकता, मैं यही खड़े रहो। तो बहुत कृष्ण दुखी हो गए, रोते रहे, सांस फूल रहा है उनका, मुंह श्वास कंपा, नहीं जोर जोर से सांस फूल रहा है, रोते रहे बच्चे जब रोते तो सांस फूलता है उनका, तो ऐसे कृष्ण दिखा रहे हैं, देखिए क्या नाटक है कृष्ण का, एज इट इज कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल है ये। डुप्लीकेट तो हम लोग करते हैं, हम नकल करते हैं, यहां कृष्ण नकल नहीं कर रहे हैं, ये कृष्ण ओरिजिनल फॉर्म में है, ये है उनका स्वभाव, ये है लीला भगवान की, इससे दिखा रहे हैं कि भौतिक जगत में नहीं आध्यात्मिक जगत में ये लीलाएं हो रही है। और इस तरह फिर उसके बाद फिर जो है कृष्ण को पकड़ लिया माता यशोदा, डांटने लगी कि आप खेल भी नहीं पाओगे, कहीं जा नहीं पाओगे, यहीं बंधे रहो बस। तो इस तरह से माता यशोदा जो है उन्होंने बहुत प्रयास किया। और देखिए सौभागत में वर्णन आता है कि ये वो भगवान जिनके कोई आदि नहीं है, कोई कोई भीतर नहीं है, कोई बाहर नहीं है, जिनका कोई भूतकाल नहीं है, जिनका कोई वर्तमान नहीं है, जिनका कोई भविष्य नहीं है, जो सभी कारणों के कारण है। यह अर्थ कि ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के लिए भी बहुत दुर्लभ है, वो शिव जी के लिए भी बहुत दुर्लभ है। आज माता यशोदा जो है उनको बड़ी आसानी से बांध पा रही है, पकड़ पा रही है। नहीं, भगवान को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, असंभव कार्य है। और इसलिए यहां पे अब रस्सी लेकर आए, जो रस्सी उपलब्ध थी वहां पे रस्सी लेकर आए और रस्सी से वो बांधने का प्रयास कर रही है। लेकिन वो क्या रहा है कि हर बार दो उंगल छोटी पड़ जाती है। दो उंगल का मतलब यहां पर केवल ये नहीं कि दो उंगल ही है, दो उंगल का कई बार ये भी अर्थ होता है, जी गोस्वामी ने बताया कि दो उंगल का अर्थ ये भी होता है कि थोड़ा बहुत छोटा रह गया, रस्सी छोटी पड़ गई। कई बार बोलते हैं ना दो चार लोग आए हैं, या कई बार बोलते हैं बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे सैकड़ों लोग आए हैं, या दो चार लोग आए हैं। दो चार लोग मतलब क्या है, कुछ ही लोग आए हैं। तो इसी तरह से बताया गया यहां पे कि दो उंगल छोटी पड़ गई, यानी कि थोड़ी रस्सी छोटी पड़ गई। तो इस तरह से ये भाव है। तो फिर वो दूसरी रस्सी लेकर आए, वो भी छोटी पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी लेकर आए, वो भी छोटी पड़ गई। भाई वो क्या रहा है पता नहीं। और इस तरह से सैकड़ों रस्सियां इकट्ठी हो गई वहां पे घर में, जितनी भी रस्सियां थी, क्योंकि गौशाला तो थी, रस्सी की कोई कमी नहीं थी, तो रस्सी जितनी भी उपलब्ध थी वहां पे घर में, आसपास के घरों से भी रस्सी इकट्ठी कर ली, जितनी भी रस्सियां, रस्सियों का पहाड़ बन गया। और कृष्ण बन नहीं पा रहे हैं, हर बार दो अंगल छोटा पड़ता जा रहा है, दो अंगल छोटा पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है, छोटा पड़ता जा रहा है। और आसपास जो गोपियां हैं वो सब हंसने लगी, ये क्या है, तुम छोटे से बालक को नहीं बांध पा रहे। और माता यशोदा भी मुस्कुराने लगी, वो भी सोचने लगी ये हो क्या रहा है, ये लड़का बन क्यों नहीं रहा है। और इतना प्रयास करने के बाद क्या हुआ कि माता यशोदा इतना श्रम कर रही, इतना प्रयास कर रही, इतनी मेहनत कर रही थी, पूरा शरीर उनका जो है पसीने से भर गया, पूरा शरीर उनका भीग गया, और ये सारे केश भी फूल गए थे और बहुत थक गए थे माता यशोदा। और ऐसे में जो है कृष्ण देखा कि माता यशोदा इतना प्रयास कर रही है, इतना परिश्रम उन्होंने किया है, इतनी घोर तपस्या की है, मुझे केवल बांधने के लिए शरीर का पसीने से लथपथ हो गया है, केश उनके खुल गए हैं। कृष्ण का हृदय पिघल गया, उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं बांधने के लिए राजी हो जाता हूं। देखिए यहां बहुत अच्छी टीका दी गई है, बहुत सुंदर टीका दी गई, कई आचार्य ने, सनातन गोस्वामी, जी गोस्वामी, विश्वनाथ ठाकुर, कई आचार्य ने उसके ऊपर टीका दी। उनका कहना है कि भगवान की अचंती शक्ति है, कई शक्तियां भगवान की, पराशय शक्ति विभुदेव श्रूयते, नहीं, भगवान की अचिंत शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की, विविध प्रकार की शक्तियां हैं। और ये शक्तियां जो है नहीं बांधने दे रही थी, शक्तियां ये सब कह रही हैं, जब बांधने की कोशिश कर रहे थे कृष्ण को कि आप कैसे बांध सकते हैं इनको, भगवान को कोई बांध सकता है क्या। इसलिए शक्तियों के कारण जो है वो रस्सियां छोटी पड़ रही थी हमेशा, रस्सियों के कारण, यानी शक्तियों के कारण वो रस्सी छोटी पड़ रही थी, शक्तियां क्योंकि अनुमति नहीं दे रही थी कि आप कैसे बांध सकते हो भगवान को, भगवान को बांध नहीं सकता है। आप जितनी भी रस्सी ले आओ, अनंत कोटि ब्रह्मांड की रस्सियां ले आओ, तब भी आप भगवान को नहीं बांध पाओगे, करके देखते रहो। लेकिन भगवान की एक शक्ति और है, और उस शक्ति को कहते हैं कृपा शक्ति। यह कृपा शक्ति भी वहां पे थी, और कृपा शक्ति को भी चिंतन हुआ, सोचने लगे अरे देखो माता यशोदा इतना कुछ कर रही है, इतना प्रयास कर रही है, इतना परिश्रम कर रही है, इतनी घोर इन्होंने तपस्या की है, शरीर देखो पसीने से लथपथ हो गया है, भागी जा रही है इधर उधर, कितना प्रयास किया है इन्होंने। उस समय कृपा शक्ति जो है भगवान की पिघलने लगी, यानी भगवान का हृदय पिघलने लगा। और भगवान का हृदय पिघलने लगा इस कृपा शक्ति के कारण, तो क्या हुआ उस समय जो है कृष्ण जो है ने सोचा, किसने सोचा कि मुझे तो बंधने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये बात सुखदेव गोस्वामी ने भी बताई है, केवल आचार्यों ने नहीं, भागवत में भी ये श्लोक उद्धृत किया गया है। अब भागवत के इसी अध्याय में श्लोक नंबर 18 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि दृष्ट्वा परिश्रमं, देखकर परिश्रम को देखकर अब हो सकता श्रम शब्द भी इसमें पर्याप्त है, लेकिन यहां सुखदेव गोस्वामी ने परी लगाया शब्द। परिक्रम मतलब पूर्ण रूप से श्रम किया उन्होंने, पूरा प्रयास किया उन्होंने, कंप्लीट एकदम पूरी तरह से शरणागत होकर पूर्ण परिश्रम उन्होंने किया। और जब किया तो क्या हुआ, कृपया आसीत त्व बंधने, आसीत स्वबंधने यानी कि कृष्ण की कृपा फिर हो गई और वो स्वयं बंधने के लिए तैयार हो गए। तो कृपा फिर बरसी परिश्रम देकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है बात समझने के लिए, ये परिश्रम ये प्रयास बहुत जरूरी है भक्ति में। जब तक हमारा प्रयास नहीं होगा जब तक कृपा नहीं बरसेगी कृष्ण। ऐसा नहीं कि पहले कृपा होगी फिर हम प्रयास करेंगे। गुरु की वैष्णव की कृपा हो सकती है पहले, लेकिन कृष्ण की कृपा कब होती है, जब हमारी तरफ से प्रयास होता है। जब तक हमारी तरफ से जब तक प्रयास नहीं होगा कृष्ण की कृपा नहीं होती है। प्रयास बहुत जरूरी है, इसलिए हम भागवत में भी देखते हैं जितने भी भक्त हैं, आप देखिए भागवत में जितने भी भक्तों का वर्णन किया गया है सबने प्रयास किया है। ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसने ना प्रयास किया। कुछ एक आध मिले होंगे जिनके ऊपर विशेष कृपा सिद्धि हो गई होगी, वो कृपा सिद्धि में भी थोड़ा बहुत प्रयास तो है। जैसे नारद जी के लिए बोलते हैं उनको कृपा सिद्धि प्राप्त, लेकिन नारद जी ने भी प्रयास किया था। नारद जी जब नारद जी नहीं बने थे तो वो भी पहाड़ों से गुजरते हुए जा रहे थे और भगवान का दर्शन उनको हो गया था। उन्होंने भी तो श्रवण किया था उन चार संतों से जो घर पे आए थे, उनका उचित ग्रहण किया था उन्होंने लगातार चार महीने चातुर्मास के समय। ये भी तो साधना है, ये भी तो प्रयास, ये भी प्रयास। और जब भगवान का दर्शन हो गया उनको जंगलों में वनों में, लेकिन उसके बाद फिर वो व्याकुल हो गए भगवान का दर्शन करने के लिए, तो फिर और निरंतर चिंतन करने लगे और सोचने लगे भगवान के बारे में कि भगवान भी अप्रकट हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रयास बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने प्रयास किया, हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभुपाद नित्य सिद्ध है, वो तो नित्य परिकर है थे इसलिए उनके लिए तो सब कुछ संभव है। नहीं, प्रभुपाद ने भी संघर्ष किया है, ये कहकर हम इस उनकी महत्वता को कम नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये मैंने कहना सही होगा कि प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया। ये वर्तमान जो गुरुजन है उन्होंने कितनी तपस्या की है, संघर्ष किया है प्रभुपाद की सेवा के लिए, कष्ट उठाया है। इन आचार्यों ने सबने कष्ट उठाया, बहुत प्रयास किया है। जब प्रयास किया है तो फिर क्या है, कृपा बरसी। इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रातः काल उठ के भगवान का दर्शन करने के लिए आना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए रोज, कहीं भी हो आप घर पे भी हो भागवत का श्रवण करिए, महामंत्र का जप करिए, प्रयास करिए कि ध्यान पूर्वक हम जप करें। इस समय प्रयास लगता है नहीं, लेकिन प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन हम भौतिक जगत में इतना प्रयास करते हैं, बाहर की दुनिया में जब देखते हैं होता क्या है कि व्यक्ति जब जाता है बाहर किसी के यहां जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो कितना प्रयास करना पड़ता है, आप सब जानते हैं। घंटों घंटों काम करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे, कई बार आपको सोते भी नहीं। हमें किसी ने बताया कि अंबानी जो है सुबह 8 बजे आता है ऑफिस रोज और रात को 12 बजे घर जाता है, उसका डेली का शेड्यूल है 8 बजे ऑफिस में आना, रात के 12 बजे घर वापस जाना। कितने घंटे हो गए, 16 आवर्स अ डे एवरी डे विदाउट फेल करता है। अब क्यों कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, कर तो रहा है ना, ना करने से करना अच्छा है। लेकिन इसी तरह अगर भक्त भी प्रयास करें कृष्ण की सेवा में तो इतनी सफलता कृष्ण देंगे कि उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन कई बार हम जो है कृष्ण को बहुत जो है सस्ता ले लेते हैं और महत्व नहीं देते हैं कृष्ण भावना को या भक्ति में। जब आ जाते हैं हम लोग तो हम सोचते हैं ये तो कभी भी कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि कृष्ण सुप्रीम बॉस है। जितनी गंभीरता से हम उनको लेंगे उतनी गंभीरता से ही वो हमें लेंगे। यह गंभीरता देखिए माता यशोदा की, कितनी गंभीरता से कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है और अंत में सफल हो रही, क्योंकि उनका परिश्रम देखकर, उनकी मेहनत देखकर, उनका तपस्या देखकर, उनकी उनके उनका समर्पण देखकर माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य रस की रज्जु थी। ये रज्जु जो थी साधारण रज्जु नहीं थी, ये साधारण रस्सी नहीं थी, ये वात्सल्य प्रेम से भरी हुई रस्सी थी, वात्सल्य रस था उसमें। इस कारण से कृष्ण बंधने के तैयार हुए। ये साधारण रस्सी से कभी नहीं बनते, क्योंकि उस रस्सी में और क्योंकि माता यशोदा के हाथ में थी वो रस्सी जो है वात्सल्य रस से भर गई। रस्सी भी चिन्मय है लेकिन माता यशोदा ने जब उसको हाथ उठाया और अपनी पूरी कृपा बरसाई उस रस्सी को पकड़कर, माता यशोदा का वात्सल्य रस जो है उसमें आ गया। वात्सल्य रस से जो है प्रभावित हो गई वर्षी, यानी वात्सल्य रस से भरपूर थी वर्षी और उस रस्सी से बनने के लिए तैयार हुए। साधन रस्सी से थोड़ा बंधे है, ऐसा मत कोई भी रस्सी लिया है कहीं से भी बांध दो। उसने वात्सल्य रस इसी तरह से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, जब प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते हैं कीर्तन करते हैं तो जगन्नाथ जी चलते रहते हैं। जहां पर श्रद्धा और प्रेम की कमी होती है वहां जगन्नाथ जी ब्रेक मार देते हैं, या फिर कभी कभी प्रेम के कारण भी और हमारे श्रद्धा और भक्ति के कारण भी जगन्नाथ जी रुक जाते हैं, ऐसा भी होता है कई बार। तो कहने का मतलब यह है कि परिश्रम बहुत जरूरी है, बिना प्रयास किए ना भौतिक जगत में सफल होंगे, आध्यात्मिक जगत में तो होंगे ही नहीं। क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, भौतिक जगत में तो आपके भाग्य भी है, अपने प्रारंभ भी है, तो आपने मेहनत बहुत ज्यादा कर भी ली तो सब कुछ तब भी आपको नहीं मिलेगा, सही ऐसा होता है ना बाहर, आप बहुत मेहनत करना तभी नहीं मिलता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां जो भी मेहनत करेगा परिश्रम करेगा निश्चित रूप से उसको मिलेगा, कृष्ण की कृपा निश्चित रूप से उसको मिलेगी, ये अंतर है, ये भेद है। तो ये वात्सल्य का प्रभाव है, एक ममत्व की भावना भाषण पता है शोंदा में, ये प्रेम भक्ति का एक लक्षण है। प्रेम भक्ति का एक लक्षण क्या है कि उनमें ममत्व की भावना हो जाती कि ये कृष्ण मेरा है, और कृष्ण को भी क्या लग रहा है उनके हृदय में ममत्व की भावना है, ये माता यशोदा मेरे लिए है केवल, ये दूध उतारने के लिए बर्तन उतारने के लिए कहां चली गई है, इनको केवल मेरे पास रहना चाहिए, मेरा ही चिंतन करना चाहिए, मेरे ही आसपास रहना चाहिए, और कहां कोई जा सकता है, हमारे पास ही आना चाहिए इनको, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आना चाहिए। ये है ममत्व, ये है पॉसेसिवनेस, ये है डीप अटैचमेंट, अनुराग, इसको कहते हैं अनुराग। प्रेम के अलग अलग स्तर है और वात्सल्य प्रेम जो है और सख्य रस, वात्सल्य रस सख्य रस, ये अनुराग की स्थिति बन जाता है। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, तो वात्सल्य रस जो है वो अनुराग की स्टेज तक जाता है। इसलिए अनुराग दिखाई दे रहा है, माता यशोदा का डीप अटैचमेंट दिखाई दे रहा है यहां पर कृष्ण के लिए, और इसी कारण से कृष्ण बन रहे हैं, ऐसे नहीं बन रहे हैं कृष्ण। एक प्रभुपाद जी लेकिन बोलते हैं कि हम लोग माता यशोदा की नकल नहीं कर सकते कि हम छड़ी लेकर आए, बोलते हैं कृष्ण आई विल बाइंड यू, प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेक्चर में कि हम इस तरह से नहीं आ सकते मंदिर में छड़ी लेकर आए कि हम आपको बांधें, क्योंकि ये माता यशोदा का अधिकार है। और उसके अलावा आगे क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि एवं संदृशता ही अंगम हरिणा भृत्य वशयता, यानी कहने का मतलब है कि यहां पर ये सबसे बड़ा जो गुण प्रकट होता है इस लीला में वो ये है, क्या है, संदर्शिता, यानी पूरी तरह से हमें दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, पूरे संसार को भगवान दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं भगवान, भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वशीभूत हूं, मेरे प्रेमी भक्त है उनके वशीभूत हूं मैं, जैसा वो चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो ये इस लीला के द्वारा भगवान ने यह दिखाया, तो इसलिए यह बताया कि स्वदर्शिता पूरे संसार को भगवान ने दिखा दिया कि देखो ये शिव जी है, ये ब्रह्मा जी है, इंद्र है और उस तरफ देवी देवता है, ये मुझे वश में नहीं कर पाते हैं, एक बार स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़ के, बस एक बार स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये भगवान को वश में नहीं कर पाते हैं। लेकिन माता यशोदा जैसे जो प्रेमी भक्त है जिनके हृदय में वात्सल्य प्रेम है या सख्य प्रेम है या माधुर्य प्रेम है या ब्रज का कोई भी प्रेम है, अन्य अभिलाषिता शूर्णम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल कृष्णानुशील भक्ति उत्तमा, यह श्लोक केवल ब्रजवासियों के लिए लागू होता है, ये ब्रज के भक्तों के लिए है ये श्लोक, क्योंकि इनको कोई ज्ञान भी नहीं है कि भगवान है, भगवान की भगवत्ता का भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है, भगवान कितना भी ऐश्वर्य प्रकट कर ले ब्रज के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भक्तों के, एक परसेंट भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मांड पूरा दिखा दी है, इससे पहले मिट्टी खाई थी भगवान ने, और माता यशोदा ने बोला कि मुंह दिखाओ क्या खाया तुमने, क्यों खाई मिट्टी, मुंह खोलो, मुंह खोल के दिखाया, पूरा ब्रह्मांड देखा उन्होंने, पूरी सृष्टि देखी उन्होंने, और माता यशोदा ने स्वयं अपने आप को देखा कृष्ण को, कृष्ण के साथ कृष्ण के मुख में। तो माता यशोदा जो है बहुत भाग्यशाली है, ये सब जो है साधारण जीव नहीं है, नित्य सिद्ध परिकर जो है उनके अंतराल शक्ति से प्रकट हुए हैं भगवान के, ये सब शक्ति तत्व जीव है और इनका कभी पता नहीं हो सकता है, क्योंकि नित्य लीला में भगवान के सहयोग है। माता यशोदा हमेशा के लिए माता है कृष्ण, और इनका साल, इनकी स्थिति, इनका पद कहीं ऊंचा है माता देवकी से। माता देवकी जब भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए कंस के कारागार में, तो बाल रूप में प्रकट हुए, लेकिन वहां पे भगवान की भगवत्ता गांव के ऐश्वर्य का पूरा उनको आभास था। उस ऐश्वर्य का मिश्रण है, शुद्ध नहीं है, इसलिए यह श्लोक लागू नहीं होता है देवकी मां वहां मथुरा में। अन्य अविनाशिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यह श्लोक मथुरा में लागू नहीं होता है। यह श्लोक केवल ब्रज में लागू होता है, वृंदावन में लागू होता है, या गोकुल में लागू होता है, जहां पर माता यशोदा को कोई भी ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं। गिरिराज जी को उठा लिया, सात दिन सात रात गोवर्धन की लीला होने वाली है, कल गोवर्धन पूजा होने वाला है, तो गोवर्धन को उठाया सात दिन सात रात लगातार उठाए रखे, इतना को दिखा दिया ऐश्वर्य। लेकिन जब उठा भी रहे थे भगवान, तो उस समय भी आनंद था, अपने भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं, अलग अलग रसों का आस्वादन कर रहे हैं एक ही छतरी के नीचे, गिरिराज जी के नीचे रहकर वहां पे दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुरी रस, सारे रसों का आदान प्रदान हो रहा है गिरिराज जी के नीचे। किसी को कोई टेंशन नहीं है, बस सब सोच रहे हैं अरे बस इतना ही भय है कहीं ये नीचे ना गिर जाए, पता नहीं कृष्ण ठीक से उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, सखा लोग ये सोच रहे हैं। और माता यशोदा रानी को देखते जा रहे हैं, गोपियों को देखते जा रहे हैं, आनंद ले रहे हो। तो सात दिन बीत गया है और नंद महाराज चर्चा कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ, कह रहे हैं कि देखो जो भी है इस हथी के इतने बड़े पर्वत को उठा लिया है, आप से इसका बड़ा गुणगान कर रहे हो, मैंने तो गर्गाचार्य से यही सुना था इसे नारायण जैसे गुण होंगे। तो बस ये नंद महाराज यही कह रहे हैं, हाँ सुना था आपने गर्गाचार्य सुना था, नारायण जैसे गुण हो, जो भी है ये हमारा लड़का है। अब क्या फायदा, देखिए भगवान इतना दिखा रहे उनको कि देखो मैं कौन हूं, सात साल की उम्र मैंने इतने ऊंचे पर्वत को उठा लिया है, तभी आप लोगों को अकल नहीं आई मैं कौन हूं। अकल नहीं आएगी क्योंकि पूरा प्रभाव है योग माया का, पूरा प्रभाव है योग माया का। योग माया का जब इस तरह का प्रभाव होता है तो तब हम कृष्ण को नहीं पहचान पाते हैं कि भगवान है, और जब महामाया का प्रभाव होता है तभी लोग कृष्ण को भूल जाते हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है इस भौतिक जगत में, माया जगत में कोई नहीं मानता है कृष्ण पर सब भगवान है, हम भगवान है, आप भगवान है, सब भगवान है, हम भगवान है, सब भगवान है, यह सब भगवान का फिलॉसफी है, सभी भगवान है लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है। तो ये महामाया का प्रभाव, लेकिन योग माया का प्रभाव क्या है, वहां भी भगवान नहीं है। जानते गोलोक वृंदावन में कृष्ण भगवान नहीं है वहां, कितनी अजीब सी बात। अगर आप नित्य लीला में जब प्रवेश करेंगे भगवान की लीलाओं में, और वहां पे माता यशोदा दिखाई पड़ेगी नंद महाराज, पता नहीं कब होगा, अभी तो हंसी आ रही है हमें, ये भी एक सही बात है, हंसना भी चाहिए क्योंकि अभी तो हंसने वाली बात ही है कि पता नहीं, आश्चर्य हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो है, सस्पेंस है हमारे लिए। तो ऐसा अगर होगा, मान लीजिए गलती से कभी हो गया और आप लीला में प्रवेश कर गए, तो वहां पे आपको आप भूल ही जाएंगे कि कृष्ण भगवान है, और तब ये मत सोचेंगे कि पूरे जीवन भर मैंने प्रचार किया कृष्ण है भी सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, और यहां भूल ही गया कृष्ण भगवान है, याद ही नहीं है कृष्ण भगवान है, नीचे इतना संसार में प्रचार कर लिया, लेकिन वो भी भूल जाएंगे आपने प्रचार किया था, आपको तो इतना ही याद रहेगा कि ये कृष्ण है और कृष्ण भगवान नहीं है ये सोचेंगे आप। ब्रज का भाव ये है, योग आएगा पूरा प्रभाव होगा, और माता यशोदा पूरा वात्सल्य प्रेम से भरी हुई है, और ये लीला के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद यहां तात्पर्य एक जगह लिख रहे हैं कि जो वात्सल्य प्रेम वात्सल्य प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, इस मार्ग में आगे जो पढ़ना चाहते हैं, उनको इस लीला का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, माता यशोदा के बारे में सुनना चाहिए कि कैसे वो दही मस रही थी, उन्होंने क्या वेशभूषा पहनी हुई थी, है ना, और क्या उनके हाथ में कंगन था, कुंडल था उनके कर्णों में, इस लीला का स्मरण, लीला का चिंतन करना चाहिए बार बार माता यशोदा के बारे में कि वो कैसे कैसे कृष्ण की सेवा के लिए दिन रात व्यस्त रहती है। तो जो वात्सल्य प्रेम प्राप्त करना चाहते, लेकिन ये उनके लिए है जो वास्तव में उस स्तर पर पहुंच गए हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सूत्र में बहुत सुंदर बात बताई है, उन्होंने कहा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भावा लिप्सुना कार्य व्रज लोका लोकानुसारता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो उन्नत भक्त है जो राग मार्ग में जाना चाहते हैं, राग मार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए, रागात्मिका भक्त है ये सब, माता यशोदा नंद महाराज ये जो ब्रज के परिकर है इनको रागात्मिका कहा जाता है। द्वारका वाले भी रागात्मिका नहीं है, रगात्विका स्पेशली किसके लिए कहा गया है, विशेष रूप से किसके लिए कहा है, जो ब्रज के परिकर है, माता यशोदा रागात्विका है, नंद महाराज रागात्विका है, और उन रागात्विका रूप गोस्वामी सुझाव ही दे रहे हैं जो उन्नत भक्त हैं, जो इस तरह की सेवा करना चाहते हैं, जो माता यशोदा की तरह सेवा करना चाहते हैं या ब्रज के परिकरों की तरह सेवा करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहिए, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। मतलब क्या है, सेवा कैसे कर रहे हैं, दो तरह से सेवा करनी है। श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं दो तरह से आपको सेवा करनी पड़ेगी, जो राग मार्ग है। राग मार्ग मतलब राग मार्ग की शुरुआत होती है जिसके हृदय में भगवान की लीलाओं के लिए लोभ जागृत हो गया है। लोभ यानी कि रुचि के स्तर पर जो है निष्ठा या रुचि के स्तर पर जब कोई पहुंच जाता है तब वो इस प्रकार की साधना प्रारंभ कर सकता है। इसको कहते हैं रागानुगा साधना। रागात्मिका भक्तों की तरह जब हम सेवा करना चाहेंगे ऐसी साधना को रागानुगा साधना कहते हैं। तो ये रागात्मिका भक्त है, यानी कि रागात्मिका भक्त के अनुगत होकर हमें साधना करनी है, उनकी तरह सेवा करनी है, उनकी उनकी तरह सेवा करनी है, लेकिन उनके समान नहीं बनना है। कोई माता यशोदा नहीं बन सकता है, कोई नंद महाराज नहीं बन सकता, वो एक ही है, लेकिन उनकी तरह अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो ये रूप गोस्वामी सुझाव दे रहे हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, यानी कि बाहरी रूप से एक साधक के रूप में, यानी कि कनिष्ठ भक्त की तरह में, कनिष्ठ मतलब जो साधना करते हुए नियमों का पालन करते हुए रहना चाहिए, और भीतर से सिद्ध रूपेण चात्र ही, भीतर से क्या तब भावा लिप्सुन कार्य, यानी कि भीतर से हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से सेवा करनी चाहिए, जिस तरह से माता यशोदा कर रही है उसका हमें स्मरण करना चाहिए भीतर से, और भारी रूप से करना चाहिए। कैसे भारी रूप से ऐसे करना चाहिए, मंगल आरती में आ रहे हैं, जप कर रहे हैं, सोलह माला कर रहे हैं, चार नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे सभी भक्त रह रहे हैं वैसे रहे, ऐसा श्रील गोस्वामी ने सुझाव दिया है। फिर उसके बाद तद्भावालिसून कार्य ब्रज लोकानुसार का, यानी कि ये जो ब्रजवासी है, नित्य जो परिकर है, ये जो रागात्मिका का भक्त है, उनका अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं, उनकी नकल नहीं करनी है, बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलना है, बार बार उनका चिंतन करके, बार बार उनका श्रवण कीर्तन करके। तो ये दामोदर लीला है, माता यशोदा किस तरह से कृष्ण को बांधती है, किस तरह से उनके लिए दिन रात चिंतन करती है, अगर उन्होंने उनको बांधा भी है वो भी कृष्ण के लिए है नहीं। तो कई टीकाकरों ने कई और बातें बताई, जैसे बताया कि इससे कई तरह के अपराध भी हुए जिस कारण से माता यशोदा ने बांधा। माता यशोदा ने क्यों बांधा कृष्ण को, एक तो अपराध किया हुआ उनसे, एक तो सबसे पहला अपराध हुआ कि उन्होंने मटकी फोड़ी, पहला अपराध ये हुआ। दूसरा अपराध हुआ कि वो भाग के गए, भाग के नहीं जाना चाहिए, अगर आपने चोरी की है और गलती मान रहे हो तो सुख जाओ, भाग कर रहे हो, ये दूसरा अपराध हुआ। कई तरह के अपराध हुए। और तीसरा अपराध किया हुआ उनसे, माखन को उन्होंने बाणनों को बांटा है, भाई ठीक है आप माखन ले रहे, बाणनों को क्यों बांट रहे, बाहर बंदरों को क्यों बांट रहे आप, ये तीसरा अपराध किया। तो ये सब कारण बन गए, माता शोर ने सोचा इतने सारे अपराध कर दिए एक साथ होलसेल में, तो ठीक है आपको बांध। और उखल भी, फिलज्जू गोस्वामी बोलते हैं जिस उखल में चढ़ के उल्टा किया हुआ था उखल को, उस पर चढ़ के बैठे थे और वहां से बांदरों को मक्खन बांट रहे थे, उस उखल में नहीं बांधा माता शोधा ने, दूसरे उखल में बांधा, एक और आंगन में एक उखल था और उखल गिरा हुआ था जमीन पे, वो उखल से बांधा माता यशोदा। अगर एक बार उखल दिखाते हैं यहां पे खड़ा हुआ उखल दिखाते, तो गलत है, क्यों नहीं किया ऐसे माता यशोदा ने, खड़े उखल से बांधते तो वो उखल को कृष्ण गिरा भी सकते थे और चोट लग जाती, तो इसलिए एक उखल गिरा हुआ था नीचे लेटा हुआ था, उखल गिरा हुआ था, वो गिरे हुए उखल के साथ बांधा था कृष्ण माता यशोदा। और इस तरह से बाद में देखते क्या लीला हुई है। फिर उसके बाद वहां पर अर्जुन वृक्षों को जब देखा भगवान ने, उनके पर दया आ गई कि चलो इनका उद्धार करना है मुझे, जो स्वयं बंधन में है वो दूसरों को बंधन से छुटकारा दिला रहे। यही बात बोली थी सनातन गोस्वामी ने उस जेलर को, जब सनातन गोस्वामी को कैद कर दिया था नवाब ने, तो सनातन गोस्वामी ने यही बात कही थी, उन्होंने कहा था कैदी उस जेलर को कहा था, जो व्यक्ति जो भक्त दूसरों को छुड़ाने में, भवबंधन से छुटकारा दिलाने में अपना समय बिताता है या उस कार्य में लगता है, धार्मिक कार्य में लगता है, दूसरों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने में भगवान जो है उस भक्त को भवबंधन से छुटकारा दिला देते। सनातन गोस्वामी ने कहा है, यानी कि अगर प्रचार कार्य में लगते हैं आप दूसरों को क्या कर रहे हैं, भवसागर से छुटकारा दिला रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, आपको भवबंधन से छुटकारा दिलाते हैं। सनातन गोस्वामी ने ऐसा बोला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आवश्यक नहीं है कि आप मुक्त होने पर ही प्रचार करेंगे, अगर आप बंधन में भी है तभी आप प्रचार आपको कर सकते हैं, और उसका परिणाम क्या होगा, भगवान आपको मुक्त कर देंगे। ये एक बात समझने। और दूसरे, यहां पर भगवान कृष्ण तो नित्य मुक्त है, उनको कोई कोई बांध नहीं सकता है, वो कभी बंधन में फंस नहीं सकते हैं, नहीं उनको कौन बांध सकता है। लेकिन ये लीला भगवान कर रहे हैं, बंधने की लीला कर रहे हैं, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में अनंत कोटि जीव है, और अनंत कोटि जीवात्माओं को जो है कर्म बंधन में बांध के रखा हुआ है भगवान ने, तो उनको कौन बांध सकता है। लेकिन ये भगवान जो है बंध जाते हैं, क्यों, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि किस तरह मैं इन भक्तों के वशीभूत हूं, इन भक्तों के द्वारा ही मैं बंधूंगा। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, आप भी अगर मुझे इस तरह से बांधना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, और वो है प्रेम का बंधन, और कोई बंधन नहीं, रक्षाबंधन नहीं। रक्षाबंधन तो अब क्या कहें उसमें, वो एक वो तो बंधन है ही, वो बंधन है, ये बंधन नहीं है, ये प्रेम का बंधन है, और जितने भी बंधन है उससे छुटकारा दिलाएगा इस बंधन में अगर फंस गए तो। ये दामोदर लीला बहुत सुंदर लीला है, और इसलिए सत्यव्रत मुनि ने बड़ा अच्छा बताया है कि मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, नवदा भक्ति के द्वारा जो प्राप्त हुआ फल, प्राप्त किया गया फल है वो भी नहीं जाता मैं, मुझे क्या चाहिए, इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनुष्या विदास्ताम के मन में, कि मैं तो केवल आपके सुंदर बाल गोपाल रूप का दर्शन करना चाहता हूं, इन लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूं, इससे बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। मैं नहीं जानता मुझे मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे तो केवल देख के बड़ा आनंद आ रहा है, बस यही देखते रहना चाहता हूं, इन लीला को देखते रहना चाहता हूं, इन लीलाओं के बारे में सुनते रहना चाहता हूं। तो ये है वास्तव में। तो इसलिए इस दामोदर लीला को सुनकर हम भी बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जिस तरह से माता यशोदा ने यहां पे कृष्ण को बांध के रखा, और फिर उसके बाद हम देखते हैं बाद में अर्जुन वृक्ष का उद्धार कर दिया था भगवान ने, तो वहां पर भी, वहां पर फिर उसके बाद नंद महाराज आ गए थे जब तक, अच्छा बलराम जी भी नहीं थे उस दिन, बलराम जी माता रोहिणी बलराम जी को लेकर गई हुई थी, उपनंद के यहाँ पे गए हुए थे, नंद महाराज के भाई के घर में गए हुए थे, वहां क्योंकि इंद्र की पूजा हो रही थी तो उसके लिए व्यवस्था करने के लिए और उसके निरीक्षण के लिए, फिर माता रोहिणी जो है वो उपनंद के घर पे गई थी बलराम जी को ले, कि बलराम जी होते और माता रोहिणी होती तो शायद ये लीला ही नहीं हो पाती। माता रोहिणी कह रही थी क्या बांध रही है उसको, छोड़ दो, क्यों उसको तंग कर रहे हैं, रो रहा है बेचारा। तो माता रोहिणी के कहने पर शायद माता यशोदा छोड़ देती, फिर ये इतनी सुंदर लीला नहीं हो पाती, और बलराम जी भी आपके साथ कुछ गड़बड़ करते हैं वहां पे। तो कई बार भगवान ऐसी लीला करते हैं जब बलराम जी होते नहीं है और माता रोहिणी नहीं होती है, तो उस समय लीलाएं करते हैं। और फिर ये सब भी वापस आ गए थे, नंद महाराज ने फिर देखा तो उन्होंने भी जो है बोला अरे किससे बात कर रखा है, खोल दिया उन्होंने, तो नंद महाराज के खोलने से खुल गए वो। और ये तो सब लोग खोल भी नहीं सकते हैं, ये रस्सी तो सबके खोलने के बस का नहीं है, क्योंकि ये जो है वात्सल्य प्रेम से भरी हुई रस्सी है, और उससे अगर बंध गए कृष्ण, संसार की ताकत, कोई ताकत जो है इस रस्सी को खोल नहीं सकती है। इसलिए नंद महाराज जैसे जो भक्त है, जो वात्सल्य प्रेम है स्वयं, वो ही आकर खोल सकते हैं। तो नंद महाराज ने आके खोला, उस रस्सी को खोला, और बलराम जी जो है थोड़े गुस्से में थे, बलराम जी ने कहा कि देखो माता, आपने जो है कृष्ण को बांध के रखा था, आप जानते हैं क्या है, ये कौन है, ये ही था वामन अवतार से लिया था, वरा अवतार भी इसने लिया था, मत्स्य अवतार भी इसने लिया था, और रामलीला भी इसी की हुई थी, भगवान राम के रूप में आया था, आप जानते हैं सभी कारणों के कारण है, पूरे सृष्टि के स्वामी है, आप उनको बांध के रख रही हैं इस तरह से। तो बलराम जी को भी बहुत डांटते हैं माता यशोदा, और बोलते हैं कि सारे अवतारों ने मेरे घर में ही जाकर जन्म लिया है। तो बलराम जी को भी वो धमकाने लगे, तुम्हें भी बांध दूंगी मैं इस तरह से, तो बलराम जी वहां से भागे। भीर अपि विभेति, ये लिखा श्लोक में आसमा विमोयति भीर अपि विभेति। तो कुंती महाराज ये कह रहे हैं कि यमराज जी भी जो है भयभीत होते हैं कृष्ण, यमराज जी को भी बड़ा भय है, यमराज जी को आदेश दिया है भगवान ने, क्या आदेश दिया है, जो मेरे भक्त हैं उनको तंग मत करना, जो भी हरिनाम ले रहा है उसके बाद मैं भेजना यमदूतों को, यमराज जी भयभीत हो जाते हैं भगवान से। यमराज जी से पूरी सृष्टि भयभीत है, लेकिन भगवान से वो भी भयभीत है। दुर्गा जी भी भयभीत है, भय स्वरूपनी दुर्गा, दुर्गा से सब भयभीत है। नहीं, दुर्गा का मतलब ही है, दुर का मतलब कठिनाई और गा का मतलब जाना। पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे कोई समस्या ना, हर जगह भय। आ ब्रह्मा पूरा लोका पूरा आवर्ती वर्जना, ब्रह्मा जी के लोग से पता लोग तो सब जगह भय है। ब्रह्मा जी को भी भय होता है, उनका भय का लेवल ऑफकोर्स अलग है। वो चूहे को देखकर नहीं भयभीत होता, चूहे को देखकर डर जाते हैं, बिल्ली को देखकर डर जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का भय अलग है। ब्रह्मा जी का भय क्या होता है, जब महाप्रलय होता है, जब महाप्रलय को ब्रह्मा जी जब देखते हैं और वो कमल के ऊपर बैठे होते हैं तो उस समय भयभीत हो जाते हैं। उनका भय का लेवल अलग है, हम महाप्रलय देखेंगे तो उसी समय खत्म हो जाएंगे, हम देख ही नहीं पाएंगे ठीक से। तो उनका भय है, उनका भय का लेवल अलग है, लेकिन भय भी तो रहते हैं कहीं ना कहीं। वो भी ब्रह्मा जी से लेकर एक इंद्र को भी, यानी कीड़ा, सब भयभीत है, सब कर्म बंधन में है। लेकिन ये क्या बता रहे, पुत्री महारानी कह रही है कि माता यशोदा की छड़ी से भयभीत हो गए कृष्ण। तो ये भी एक आनंद है, ये भी एक उनका एक गुण है भगवान का, वो भी भयभीत होना चाहते हैं, वो भी किसी से डरना चाहते हैं। लेकिन सांसारिक लोगों से क्यों डरेंगे भगवान, भगवान जानते हैं कि मैं भी डरूं, लेकिन किससे डरूं, अपने भक्तों से डरो, उनके प्रेम के कारण मैं भी जाता हूं, मैं भयभीत हो जाऊं तो मुझे भी डांटे, मुझे भी बांध के रखे। इस तरह से भगवान भी चाहते हैं, इस तरह का आदान प्रदान, इससे उनको आनंद मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत धनवान होता है, ऐश्वर्य होता है, यशस्वी होता है, उसके लिए सामान्य लोगों में घूमना फिरना बहुत दिक्कत हो जाती है, किसी से संबंध बनाने में दिक्कत होती है। एक धनी व्यक्ति के लिए किसी से, एक धनी व्यक्ति जो होगा आप जानते हैं, बहुत धनी व्यक्ति होता है वो किसी से ज्यादा जान पहचान नहीं बनाता है। उसके फ्रेंड भी होते हैं बहुत ही आर्टिफिशियल लेवल पर होते हैं, और बहुत ही कम ज्यादा वो अपने कॉन्टेक्ट रखता है, बहुत रिजर्व रखता है अपने आप। क्यों? उसके पास क्योंकि इतना ऐश्वर्य है, और उस ऐश्वर्य के कारण जो है किसी से उसका एक व्यक्तिगत संबंध नहीं बन पाता है, यहां तक कि अपने घर परिवार के लोगों से भी उतना समय नहीं बना पाता, क्योंकि समय नहीं है उसके पास। अंबानी जो रात को 12 बजे आ रहा है और सुबह 8 बजे जा रहा है, उसके बाद घर के लिए समय कहाँ है? तो ऐसे व्यक्ति के लिए सामान्य लोगों की तरह घूमना फिरना बड़ा मुश्किल है। जैसे अंबानी जो है उसके घर के ऊपर 35 फ्लोर का बिल्डिंग है बॉम्बे में, और उस बिल्डिंग के ऊपर 4 हेलीपैड है, और वह हेलीकॉप्टर में बैठता है, वहां से ऑफिस जाता है, और ऑफिस जाकर फिर उसी हेलीकॉप्टर में उतरता है, वापस नीचे आता है। पृथ्वी में उतरता ही नहीं, वो जमीन पे अपने पाव रखता ही नहीं। यानी कि हवा सामान्य लोगों की तरह वो नहीं हंस सकता है, सामान्य की तरह लोगों की तरह जो है उसका खेल कूद नहीं है, कुछ नहीं। और उसका जो लड़का है उसको साउथ इंडियन डिश खाने का बड़ा मन करता है, और चौपाटी टेबल के पास एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वहां डेली आता है वो शाम को इडली खाने बड़ा खाने आता है। और जब आता है तो 4 उसके कमांडोस होते हैं, साथ में आगे पीछे गाड़ियां होती है, इतने सारे उसके सर्वेंट्स होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, सिक्योरिटी इतने होती है उसके लिए कि कहीं कोई आगे छोटा उठा के ले गया तो हो गया फिर। तो आगे वो साउथ इंडियन डिश खाता है, तो सामान्य लोगों की तरह किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, और लोगों की तरह जो है मतलब घुल मिल नहीं सकता ज्यादा लोगों से, उनको एक रिजर्व रहना पड़ता है, एक एरिया में एक अपने आप को बांध के रखना पड़ता है। इसमें आनंद नहीं है, इसमें खुशी नहीं है, बन के रहना घुट रहा है वो। एक्चुअली इतना धन होने के बाद, पैसा होने के बाद भी अंदर परेशान है, चिंतित नहीं। लेकिन ब्रज में क्या आनंद देखिए, कोई ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं है, गाय को लेके घूमो, जंगलों में घूमो, आनंद ही आनंद है। माखन खाओ, दही खाओ, माखन की चोरी करो, आनंद ही आनंद है। ये है ब्रज का भाव, कोई ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं वहां। और कोई मान भी रहा है कि कृष्ण भगवान ये मेरा लड़का है, ये मेरा सखा है, नहीं, बांसुरी बजाते हैं गोपियों के पास, गोपियों को बुला लेते हैं, रास्ते रास्ते हो रहा है, आनंद दे रहे हैं, बस आनंद ही आनंद है वहां पे। क्यों आनंद है? क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कृष्ण परम भगवान है। अगर ब्रजवासियों को भी पता चल गया, मान लीजिए, वो पता तो नहीं चलेगा, वैकुंठ का भाव जैसे मान लीजिए, वैकुंठ के भाव में सब आरती उतार रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हो रहा है? इसे भगवान के कई बार सोचते हैं, चेतन चरतामृत है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, पूरा संसार में मेरी पूजा कर रहा है, वंदना कर रहा है, विधिवत पूजा कर रहा है, पांचवाद की विधि से आरती उतार रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? मेरा भी मन करता है मैं किसी के साथ खेलूं, गुल्ली डंडा खेलूं, मुर्गी बनूं, मुझे भी कोई बांधे, मुझे भी कोई रुलाए, मुझे भी कोई डांटे, मैं भी जाता हूं जाके वहां घरों में जाके, पड़ोसी के घर में जाके चोरी करूं, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूं यहां पर वैकुंठ में, ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे लाखों करोड़ लक्ष्मियां जो है मेरी सेवा में लगी हुई है, कोई आनंद नहीं है यहां पर। ये आनंद है ब्रज में, ये ब्रज का आनंद, इसलिए हम सब तो वहां ब्रज में जाना चाहते, वैकुंठ में जाना नहीं चाहता, हमें सोचे बैठक में जाना चाहते वैकुंठ, आपके वैकुंठ जाने की इच्छा है, ब्रज में जाने की इच्छा बताइए, इसलिए आप यहां बैठे हो, नहीं तो श्री संप्रदाय से जुड़े होते हैं और वहां स्तुति कर रहे होते, प्रार्थनाएं बोल रहे होते, ये आनंद नहीं मिलता दामोदर लीला का फिर श्री संप्रदाय में आपको, ये याद रखिएगा, श्री संप्रदाय में दामोदर लीला का आनंद नहीं मिलेगा, लीला सुन भी लेंगे वो फिर भी वैकुंठ का भाव बना रहेगा उनका, तो ये है, इसलिए ये हमारा जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है अद्भुत है, और इसमें जो लीलाओं का वर्णन है जिस तरह से गोस्वामियों ने आचार्यों ने टीकाएं दी है उसका कोई उसकी कोई तुलना नहीं है, किसी संप्रदाय से की ही नहीं जा सकती है, कहीं भी नहीं है ये ब्रज का भाव, जिस तरह का भाव इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है वो श्रील प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी भेंट है पूरे संसार को, ये ब्रज का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, कलयुग में सबको दे रहे हैं बताइए, और हम ले नहीं रहे, अनर्पित चरण चिराग करुणया अवतीर्ण कलौ, क्या कि जो पहले कभी नहीं दिया था किसी अवतार में भगवान ने, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके वही ब्रज का भाव सामान्य बद जीवात्माओं को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, थोक में दे रहे हैं, ले लीजिए खरीद लीजिए, तो ये है, तो इसलिए बड़ा भाग्य हमारा सौभाग्य है, ऐश्वर्य भरा हुआ है मंदिरों में, ऑपुलेंट टेम्पल्स है हमारे, लेकिन ऑपुलेंट टेम्पल से क्या है असलियत क्या है कि इसमें ब्रज का भाव है, ये ऐश्वर्य इसलिए दिखाया जा रहा है केवल आप सबको यह निमंत्रण देने के लिए, लेकिन इंटरनली हमारा और कोई प्रोग्राम है, आप सही में बता दें, आप राधा पार्षदी मंदिर बन गया है वहां पे, रोहिणी का टेम्पल लगभग बन चुका है, द्वारका में भी बनने वाला है, द्वारकाधीश का ऐश्वर्य वहां प्रकट होगा, लेकिन अंदर जो है हमारा कोई और एजेंडा है, इंटरनली एजेंडा हमारा यही है दामोदर लीला का, कितना भी अपर दिखाए शैंडिलियर लटकाए चमकते हुए जो है झूमर लगाए और अलग अलग वहां डेकोरेशन करें दुनिया को आकर्षित करें, आइए आइए देखिए कितना ऐश्वर्य है मंदिर में, हम एक्चुअली सबको बेवकूफ बना रहे हैं इस तरह से, असलियत क्या है ये ब्रज का भाव है जो श्रीमद् भागवत में है, इन चेतन चरितामृत में है, ये है असली हमारा खजाना, ये है असली आनंद, इसलिए कभी भी आप भ्रमित मत हो जाइए इस ऐश्वर्य को देखकर, ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये हमारा एजेंडा है श्रवण कीर्तन का जो भागवत में दिया गया है, चेतन चरितामृत में दिया है, ये है आनंद असली में, इसके लिए हम यहां पर आए हैं, ऐश्वर्य के लिए नहीं, ऐश्वर्य तो बस प्रभुपाद जी से कहते थे हम तो झोपड़े के नीचे रह सकते हैं, लेकिन कौन आएगा यहां पे नहीं, इसलिए बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं ताकि आप सब आए, लेकिन आने के बाद हम यही करेंगे, करना वही है हमने, कुछ भी कर लो करेंगे वही हम, तो ये हमारा आइडिया है, तो इसलिए हम लोग फिक्स है इस बात, तो ये अब श्रीमद् भागवत जो है श्रीमद् भागवत बार बार हमें स्मरण करा रहा है, ये लीला हमें बार बार स्मरण करा रही है, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए यहां पर, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, इस उद्देश्य से हम यहां पे आए, ये जो ब्रज का भाव है, ये जो क्वालिटीज है जो ब्रजवासियों में है माता यशोदा में है, ये क्वालिटी हमारे अंदर आनी चाहिए, इस तरह से जो है फिर हम प्रगति करेंगे आगे बढ़ेंगे, तब नहीं तो अन्यथा क्या होगा, मार्ग से भटक जाएंगे, नहीं हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न मेरी कमेंट्री कोई नहीं है, सब प्रभुपाद ने दिया है, पूर्ववर्ती आचार्यों के देन है, आपने मौका दिया है मैं बोलने का, आप बैठे इसलिए बोल पाए ये आपको आपकी पवित्रता है, ये आपकी शुद्धता है कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं ये आपकी महानता है, तो आपको धन्यवाद, ठीक है, हाँ जी, गोकुल को नहीं गोवर्धन को, इतना बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि आपको एक पूछे कि बिल गेट्स के पास मर्सिडीज क्यों है या रोल्स रॉयस क्यों है, तो ये वही बता सकता है पॉइंट है कि मतलब हर चीज में एक्सप्लेनेशन बड़ा मुश्किल, मुझे जहां तक मुझे पता नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोल देता आपको, मुझे नहीं पता 7 दिन क्यों हुआ या 8 दिन क्यों नहीं हुआ या 6 दिन क्यों नहीं हुआ, और 6 दिन होता तो हम यही क्वेश्चन पूछते 6 दिन क्यों नहीं हुआ 7 दिन क्यों नहीं हुआ, हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं 6 दिन क्यों हुआ, तो वो क्वेश्चन भी हमारा हो सकता था, तो जो भी प्रश्न है आपका, लेकिन मेरा उत्तर यही है कि मैं जानता नहीं हूं, दूसरा उत्तर ये है कि उनकी इच्छा है, और वो रोल्स रॉयस लें या मारुति 800 है, बिल गेट्स इतना अमीर व्यक्ति है फिर भी मारुति 800 क्यों रखा उसने, और उसकी इच्छा है क्यों रखा है वो जानता है, इसी तरह से भगवान जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छा है भाव का, इसके लिए प्रमाण देखना पड़ेगा, शास्त्र प्रमाण भी देखना पड़ता है। भाव अच्छा है आपका कि एक दिन नहीं दो दिन नहीं सातों के सातों दिन, जितने हफ्ते में सात दिन है और सातों दिन मैं उनकी रक्षा करता हूं, बहुत अच्छे बात बताया आपने, मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी कहीं देखना पड़ेगा आचार्यों की टीका में कहीं ना कहीं होगा ऐसा कुछ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और कुछ और कुछ बस ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी,
जैसे गौड़ीय वैष्णव में जैसे माधुर्य रस को ज्यादा प्रधानता देखते हैं, तो
माधुर्य रस की प्रधानता, माधुर्य रस सर्वोच्च रस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोई रस नहीं है। दामोदर लीला भी तो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ही उसका उत्सव मनाया जाता, पूरे महीने हम करके आए फिर यहाँ ईश्वर दामोदर क्यों रखा हमने, ये तो प्रभुपाद जी ने रखवाया हुआ है। और हमारे दामोदर अष्टकम तो बहुत प्रचलित है पूरे गौड़ीय वैष्णव समाज में, हमारे स्कॉल में नहीं जितने भी गौड़िया वैष्णव है वो सब दामोदर लीला का पाठ कर रहे, कथा कर रहे हैं, तो कृष्ण की लीला ना। माधुरी रस सर्वोच्च रस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब सारा रस बेकार है, ठीक है ना। माधुरी रस सर्वोच्च रस है नो डाउट, लेकिन सब उस रस में है कहां, अभी तो कोई रस ही नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मान लो ना कुछ है ही नहीं, तो जो है उसको तो पढ़ लो बाद में, अभी कुछ है नहीं। माधुर्य रस ठीक है, माधुर्य रस है सर्वोच्च रस, पर अभी क्या है, अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो पूरे खोखले हम लोग, अभी जब मैं सो रहे हम लोग, अब कौन सा रस ढूंढे कहां ढूंढे, अभी अभी सुन लो बाद में देखेंगे, ठीक है। समय आने पर होगा सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ उस लेवल, जब अधिकार होगा तब भजन होगा, बिना अधिकार के भजन नहीं हो सकता है। ये माता यशोदा के बारे में बता रहे हैं, प्रभुपाद की माता यशोदा की लीला का चिंतन करो, ये उन भक्तों के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो वास्तव में जिनको अधिकार प्राप्त हो गया है उस प्रकार का भजन करने का। भजन करने का अधिकार चाहिए, पात्रता चाहिए। प्लास्टिक की अगर थैली में खोलता हुआ घी डाल दो या खोलता हुआ गरम गरम तेल डाल दो तो थैली फट सकती है, पात्रता नहीं है। अधिकार होता है तभी भजन होता है, अधिकार नहीं है, अधिकार के क्षेत्र में नहीं आए तो आप कितना भी कोशिश कर लो भजन करने का नहीं हो पाएगा। इसलिए हम केवल प्रयास कर सकते हैं, कृपा जब वहां से होगी, अधिकार जब दिया जाएगा, अधिकार दिया जाता है गुरु परंपरा के द्वारा वैष्णव के द्वारा, जब वो अधिकार जब आपको मिलेगा तब आप जो है आप भजन कर पाएंगे, खूब भजन होगा फिर आपसे, खूब आनंद आएगा फिर इन लीलाओं का, फिर आप ये फैसला करें कहां जाना है। अभी तो हम पहुंचे नहीं स्टेशन, अभी तो प्रसादम का प्रोग्राम है, प्रसादम में तो रस आता कि नहीं आता सबको, वो है महाराष्ट्र तो प्रसाद का आनंद ले, प्रसाद भी अच्छा ही है, कृष्ण से अभिन्न है, ये भाव रखे हम प्रसाद ग्रहण करें तो उसी से हमारे हृदय की पवित्रता होगी, शुद्धता होगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, दामोदर मास की, प्रभुपाद की।